आदरणीय शीलू दीदी जी हम सभी के बीच पहुंच गई है। हम सभी करतल ध्वनि के साथ आदरणीय दीदी जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ज्ञान की ज्योति बनकर जो जग में प्रकाश फैलाती है, ज्ञान की ज्योति बनकर जो जग में प्रकाश फैलाती है, राजयोग की शक्ति से जो जीवन को मुस्काती है, राजयोग की शक्ति से जो जीवन को मुस्काती है, सेवा ही जिनका संकल्प है, प्रेम जिनकी पहचान, ऐसी दिव्य राजयोगिनी शीलू दीदी को शत शत नमन, शत शत नमन। आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी का जन्म 1948 में मुंबई महानगरी में हुआ। 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में ही आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई। मुंबई विश्वविद्यालय से 1969 में विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हुई। सेवाओं की शुरुआत में आपने बेंगलोर, काठमांडू, हैदराबाद, मुंबई तथा कुछ अफ्रीकी देशों में, मॉरिशियस में ईश्वरीय सेवाएं प्रदान करते हुए 1976 में आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप से रहकर राजयोग शिविरों का कुशल निर्देशन कर रही है। आपने पांचों ही महाद्वीपों में 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया और विश्व की अनेकों आत्माओं में आध्यात्मिक क्रांति के बीज बोकर उनके जीवन में सुख शांति की अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया है। सन 1993 में टीवी के माध्यम से संस्था की ओर से मूल्यों के प्रति जन जागृति लाने के भागीरथ कार्य की शुरुआत करने वाली आप सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी बहन है। जोरदार तालियां दीदी जी के लिए। स्वयं परमात्मा से शीलू दीदी जी को वरदान मिला है कि उनकी वाणी में देवी सरस्वती का वास है, जो हम सभी क्लास में भी अनुभव करेंगे। दीदी जी हरि के द्वार की हर की पौड़ी है। वास्तव में शीलू दीदी जी परमात्मा का अमूल्य कोहिनूर हीरा है। रूहानियत की खुशबू से भरपूर रूहे गुलाब है और अपनी इसी रूहानी खुशबू से संसार की रूहानी सेवा में अथक होकर आप सतत उपस्थित हैं। आज दीदी जी के क्लास का विषय है मुश्किल को सहज बनाने की विधि। मुश्किल को सहज बनाने की विधि। मुश्किलें आती है जीवन में, पर घबराना नहीं है। दीदी जी के अनुभव कहते हैं बस बाबा को बीच में लाना है, बस बाबा को बीच में लाना है। जो याद की शक्ति से हर तूफान को शांत कर दे, वो कला सिखाने आई है आदरणीय शीलू दीदी जी। अब हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी से।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हम सुन रहे थे, आ हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ा, प्रभु मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो मुश्किल को सहज बनाने की विधि यही है, प्रभु को साथ रखो तो मुश्किलें सहज हो जाएगी। इस कलयुगी दुनिया में अगर हम चारों ओर नजर घुमाते हैं तो कदम कदम पर मुश्किलें आती है। अब इन्हीं मुश्किलों को आप कुछ भी नाम दे दो, कोई उसे चुनौतियां कहते हैं, चैलेंजेस, बहुत चुनौतियां सामने आती है, कोई उसे समस्याएं कहते हैं, बहुत समस्याएं आती है, कदम कदम पर समस्याएं आती है, कोई उसे परीक्षाएं कहते हैं, तो परीक्षाएं भी कदम कदम पर आती है। और अगर आध्यात्मिक भाषा हम यूज करें, बाबा की भाषा यूज करें, तो बाबा हर मुरली में कहते हैं कि माया वार करती है, तो वो माया भी मुश्किलें पैदा करती है। तो अगर हम देखें कि कितनी प्रकार की मुश्किलें आती है, फिर उनको हम कैसे सहज पार करें, उस पर थोड़ा और स्पष्टीकरण जानेंगे। अगर हम देखें तो अनेक प्रकार की मुश्किलें हैं। पहले तो अपने तन से ही मुश्किलें आती है। हम चाहते तो बहुत कुछ है करना, लेकिन तन साथ नहीं देता है। कई बुजुर्गों से पूछिए आप कि भाई आप ये करें, कहते क्या करें, अब ये शरीर से होता नहीं है। जवान थे तो बहुत कुछ कर सकते थे, अभी वो ताकत नहीं है। तो इसीलिए मुश्किल है, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता। अब इस मुश्किल को हम सहज कैसे करें, उसको भी थोड़ा समझेंगे। फिर कई बार धन की कमी होती है, ये भी एक मुश्किल आता है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, ये करूं वो करूं, तन की भी शक्ति है लेकिन धन की शक्ति नहीं है। तो धन न होने के कारण वो मुश्किल हो जाता है। कई बार हम संबंधों में देखते हैं, किससे हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है, तो उसके साथ मिलकर चलना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच मेरी सोच से बिल्कुल अलग है, उसके संस्कार मेरे संस्कार से बिल्कुल अलग है। कई बार होता है ना, हम नरम स्वभाव के और वो कड़क स्वभाव का है, वो कड़क होके बोलेगा, हम नरम होके बोलेंगे, तो हम कहेंगे भाई इतना कड़क नहीं बनो, नरम बनो, हम जैसे नरम है। वो कहेंगे नहीं, नरम होके चलेंगे काम नहीं बनेगा, उनकी अपनी सोच है। अब साथ में रह रहे हैं, मिलकर के रहना है, लेकिन ये भी एक समस्या है। तो तन का रोग, फिर धन की कमी, संबंधों में अनबन, फिर सरकार की अकाबोझ, सरकार के भी नए नए कानून बनते जा रहे हैं, हम जैसे पहले चलते थे अब नहीं चल सकते हैं, कानून ऐसा आ गया है। फिर कई बार अपने ही संस्कारों से हम परेशान हो जाते हैं। हम चाहते हैं क्रोध न करें, लेकिन आ जाता है, फिर कहते क्या करें, हम चाहते तो नहीं थे पर आ गया। तो ये भी एक समस्या तो है, अपने संस्कारों को बदल नहीं सकते हैं। तो उस हिसाब से हम देखें, कई मुश्किलें आती है, और हर मुरली में बाबा कोई न कोई रूप से मुश्किल को सहज बनाने की विधि बताते हैं। अब तन का रोग आ जाए तो क्या करो, आ गया है? डॉक्टर कहेगा कि आठ कोई हड्डी टूट गई, अब हड्डी टूट गई तो बिस्तर पर पड़े रहे, बहुत कुछ काम करना था, बहुत काम करना था, लेकिन अभी डॉक्टर कहते हैं नहीं, एक महीना आपको बेड पर रहना है, सारा काम ठप, यहाँ जाना वहाँ जाना वो करना, बस सारा काम ठप, एक महीना बिस्तर पर। अब आप कहेंगे ये कैसी मुश्किलात आ गई, लेकिन कैसे हम उसको सहज करें, तो जरूरी नहीं है कि हम उस टूटी हुई टांग से भी चले करें, नहीं, आराम करना है क्योंकि आगे बहुत कुछ करना है। अगर अभी हम नहीं आराम देंगे पैर को तो फिर ठीक कैसे होगा पैर, हमको उसे रेस्ट देना है, आराम देना ही है। तो जरूर हमने जो कुछ सोचा था ये करेंगे वो करेंगे नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है एक बहन हमारी विदेश यात्रा पर जा रही थी, बड़ी बहन थी, सब कुछ तैयारी हो गई, सब तैयारी और बैग बैगेज सब कार में पड़ गया, सूटकेस सब कार में आ गया, सब तैयार थे। अब वो जैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरी धड़ाम करके गिर गई। अब गिर गई, उसके पैर की हड्डी टूट गई। अब बताओ कहाँ सब तैयारी हुई पड़ी थी, कहाँ उसकी बैग बैगेज भी सूटकेस वो कार में चली गई थी, उसके साथ जो जाने थे वो भी सब तैयार थे, और अचानक हड्डी टूट गई। अब क्या करेगी, वहाँ की तैयारियाँ भी हो गई थी पर अचानक हो गया ये। तब बाबा की याद आती है ना, बाबा कहते हैं बच्चे अचानक होगा, तो अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी मुश्किल को मुश्किल तब मुश्किलात तो आ गई, तो उसको सहज कैसे करना होगा, जा तो सकते नहीं है। तो अपने पैर को कोसने की बजाय या अपने भाग्य को कोसने की बजाय या अपने कर्मों को कोसने की बजाय, क्योंकि कई यही काम करते हैं, अपने कर्मों को कोसते, हाय मेरे कर्म, क्या मेरे पैर टूट गए, क्या मेरा भाग्य, मेरा इतना अच्छा मेरा प्रोग्राम बन रहा था क्या हो गया, हाय मेरी तकदीर, तो हाय हाय तकदीर करने की बजाय उसका पॉजिटिव अप्रोच क्या है, हाँ पॉजिटिव अप्रोच क्या है, चलो इसमें भी कोई कल्याण होगा। अब जैसे ही मैंने ये सोचा इसमें भी कोई कल्याण होगा, तो बताओ इतने जो व्यर्थ संकल्प चले थे अपने बारे में या किसी और, कोई ग्रहचारी है, कोई क्या है, क्या क्या सोचने लगते हैं, वो सब ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा, इसमें भी कोई कल्याण होगा। क्या पता इससे कोई आगे कोई आफत आने वाली होगी, चलो इसी में टल गई, कम से कम घर में तो है, कहीं रास्ते में नहीं हुआ है, अगर रास्ते में होता तो क्या होता, तो बताओ घर में ही है ना, तो घर में ही है ना, हम कहीं गए थोड़ी अभी तक। तो क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं, या सोच बदलना मुश्किल है? तो मुश्किलात कहाँ आती है, जब हम अपनी सोच को बदल नहीं पाते हैं, सारी मुश्किलात यहीं आती है। बातें तो आएगी, हम बातों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जो बातें आई मुश्किलात की, उन बातों को हम मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है ये समझकर हम रोते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, दूसरों को कोसते रहेंगे, अपने तकदीर को भी कोसते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, गुस्सा होते रहेंगे, तो क्या वो बात सुधरेगी? अब सुधरने वाली तो है नहीं, वो तो एक महीना कम से कम, डेढ़ महीना भी हो सकता है, हमको तो बिस्तर पर रहना ही पड़ेगा। और उसका चलो प्लास्टर भी लग गया, दर्द का नहीं पता चलता है, लेकिन तकलीफ तो होती है ना। कितनों से सेवा लेनी पड़ती है, खुद कुछ भी नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम सहज कोई इसलिए इस हिसाब से नहीं करेंगे कि छू मंत्र से टांग ठीक हो जाएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब वास्तव में कुछ कसूर तो हमारा ही था, मैं जल्दी जल्दी में थी, अब धीरे से चलना चाहिए ना, मुझे भी ऐसी जल्दी क्या है, लेकिन जल्दी जल्दी यहाँ जाना है, सब तैयारी हो गई है, निकलना है निकलना है। लेकिन जो चीज़ हमको संभाल कर करनी है उसके लिए जल्दी जल्दी क्या, एक का दस गुना देना पड़ेगा, एक सेकंड का ही तो अंतर होगा, चलो दस सेकंड का अंतर होगा, चलो एक मिनट का अंतर पड़ेगा, लेकिन वो एक मिनट का अंतर जो पड़ेगा वो नहीं समझते हैं और जल्दी जल्दी चलो उतर गए नीचे और गिर गए। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, कोई भी मुश्किल आए उसमें सोच समझ कर करना है। पता है ना सीढ़ियां कैसी है, मालूम है, चलो नहीं भी पता है तो भी धीरे से चलना है ना, जल्दी जल्दी की क्या बात है। और कई बार देखा जाता है कोई भी बात जल्दी जल्दी में करते हैं ना, वो काम कोई अच्छा नहीं होता है, बिगड़ जाता है। कोई भी कार्य टेंशन में करते हैं, तनाव में करते हैं, उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए भक्ति मार्ग में कई प्रकार की ऐसी बातें हैं, लोग तो समझते हैं कि ये तो इनका वहम है। भाई कोई कहेंगे देखो हम घर से निकल रहे थे, किसी ने मेरे से पूछ लिया आप कहाँ जा रही हो, बस कहाँ जा रही हो पूछा और हमको गुस्सा आ गया, इसने क्यों पूछा कहाँ जा रही है, मेरा काम होगा ही नहीं। अब ये भी तो हमारी सोच है, जो काम होना होगा वो तो होगा ही, पर पूछ क्यों लिया, फिर उनको डांटना, पूछा क्यों। इसीलिए अब दोष फिर उस पर, फिर कोई जब गए कोई छींक आ गई, हाँ छींक आ गई, अरे भाई छींक आ गई, इसको छींक आ गया, मेरा काम होगा नहीं, ये बिल्ली काट के गई रास्ता, काली बिल्ली, अब मेरा काम होगा नहीं। तो इस प्रकार से जो अंदर वहम बैठ जाती है, वहम बैठ जाता है, या अनुमान भी लगा देते, उसमें भी तो कितनी बातें आती है, इसने ऐसे किया होगा, ज़रूर किया होगा, ये तो ऐसे ही करेगा, तो ये हमारी सोच को हम इतना बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो समस्या है, समस्या है, तो वो छोटी बात को भी इतनी बड़ी समस्या बना लेते हैं। तो क्या हम उसको एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं? इसीलिए कई ऐसे लेक्चर्स होते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएं। तो कई ऐसी जीवन में बातें आती है, परंतु हर वक्त हम उसको पॉजिटिव में, सकारात्मक रूप में कैसे लें? हाँ ये तो कहेंगे चलो बाबा साथ है, अब बाबा साथ है तो बाबा ने ऐसा क्यों करवाया, ये क्यों हुआ बाबा साथ था तो, पर गलती तो मेरी थी ना, बाबा को दोष क्यों दे। कई बार होता है बाबा ये दुख आपने क्यों दिया, बाबा कहते मैं तो दुख देता नहीं हूँ, है ना, भक्ति मार्ग में ये तो यही कहते ना, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे करतार, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव सोचना है, चलो ये जो भी दिया, चलो बाबा ने दिया, वास्तव में बाबा ने तो दिया नहीं, ये भी हम बाबा को दोष क्यों देवे कि बाबा ने दिया, है तो मेरे ही कर्मों का हिसाब किताब, तो जहां मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, हम बाबा को दोष क्यों दें? जहां मेरे ही कर्मों की बात आती है, हम दूसरों को दोष क्यों दें? पर आजकल ये दुनिया में एक ट्रेंड बन गया है, सबके अंदर ये भाव है कि दूसरे का दोष है, दूसरे का दोष है, उसके कारण ये हुआ, उसके कारण ये हुआ। कल भी आपको हमारी हेमा बहन ने बताया ना, बड़ी दीदी थी, कैसे ऑपरेशन हुआ और फिर तो वो शरीर छोड़ा उसने, तो सबने कहा ये डॉक्टर भगवती का दोष होगा क्योंकि जिसने ऑपरेशन किया। तो बाबा ने क्या संदेश में कहा, न भगवान का दोष न भगवती का दोष। लेकिन उसके आगे का उसने नहीं बताया, लेकिन बाबा ने बहुत कुछ कहा, क्योंकि जब बड़ी दीदी थी तो बड़ी दीदी जैसे ज्ञान में आई, उनका नाम गोपी था, मनमोहिनी दीदी, उनका नाम गोपी था, और जैसे ही बाबा के पास आई उसको बहुत साक्षात्कार हुए, बहुत साक्षात्कार हुए, और कृष्ण की दीवानी थी, बिल्कुल गोपी की तरह कृष्ण की दीवानी थी, और साक्षात्कार की उनको बहुत इच्छा होती थी। लेकिन जैसे बाबा के पास आई तो उनको बहुत साक्षात्कार हुए श्री कृष्ण के, और ऐसे रास करती थी बाबा के, कृष्ण का साक्षात्कार करते। लेकिन काफी समय तक वो हुआ, उसके बाद बंद हो गया उनका साक्षात्कार का पाठ। तो उनके मन में हमेशा होता था, मैं वही साक्षात्कार जो मैं पहले पहले करती थी, और मैं कैसे गोपी थी, मेरा नाम भी गोपी था, और मैं बाबा की याद में ऐसे रास करती थी, वो मेरे दिन में फिर से अनुभव कैसे करूं? वो तो मुश्किल था। फिर तो ज्ञान में आगे आए, बहुत कुछ किया। अब जब वो कोमा में थी 21 दिन तक, लास्ट में ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, ब्रेन में ट्यूमर था, तो डॉक्टर ने कहा कि क्योंकि आँख का ऑपरेशन कराना था, कैटरेक्ट था, तो क्या कि उनको अचानक एक दिन अंधेरा हो गया, आँखों के सामने बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा हो गया, और कैटरेक्ट तो था ही, मोतियाबिंदु था, लेकिन अंधेरा क्यों हुआ? वो तो मोतियाबिंदु का ऑपरेशन हो जाता है, सहज हो जाता है, लेकिन आँखों के सामने अंधेरा क्यों आ गया? तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाले ने कहा कि हम ऐसे ऑपरेशन नहीं करेंगे, ब्रेन का स्कैनिंग कराओ, क्या पता कोई ऐसा ट्यूम कुछ है, गांठ या ट्यूमर वो रोक आए, इसीलिए आंखों के आगे अंधेरा हो गया। उस तब तक फायदा नहीं है कैटरेक्ट का, मोती का ऑपरेशन कराना। तो जब स्कैनिंग कराया तो पता चला एक गांठ है, तो जब तक गांठ का ऑपरेशन ब्रेन में नहीं होगा तब तक नहीं हो सकेगा। खैर सब ने यही निर्णय लिया कि कोई बात नहीं, छोटी सी गांठ है वो कर लेंगे, अच्छी भी हो, सक्सेस भी हो गया, ऑपरेशन सब ठीक हो गया। अचानक ऑक्सीजन जाना बंद हो गया ब्रेन में, मना पहुंच नहीं रहा था, तो कोमा में चली गई। पर कोमा में भी उस रूप से नहीं थी, वो मुस्कुरा रही है और ऐसे ऐसे कर रही है, बस अभी क्या बोल रही है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो तो अपनी मस्ती में थी, और हम सोचे तो कोमा में। अब डॉक्टर्स ने भी बहुत कोशिश की, वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं रहा था। तो 21 दिन तक हॉस्पिटल में थी, और लेकिन ऐसा उनके चेहरे से अनुभव होता है कि अंदर ही अंदर वो बहुत मस्ती में, अनुभव होता था चेहरे से, लेकिन बोल भी कुछ रही थी, लेकिन क्या बोल रही है समझ में नहीं आता था। और 21वें दिन उसने शरीर छोड़ा, लेकिन इस साक्षात्कार में बाबा ने कई राज खोले। बाबा ने कहा ये उसकी जो इच्छा थी ना कि मैं वही साक्षात्कार करूं जो मैं गोपी के रूप में करती थी, लेकिन अभी वो नहीं हुआ, तो वो 21 दिन उसने वो अनुभव बाबा ने उसको कराया। तो देखो बाबा ने उसको अनुभव कराया। और उसकी ये इच्छा थी कि श्री कृष्ण को मैं जन्म दूं, ये भी उसकी इच्छा थी, श्री कृष्ण की मैं माँ बनूं। तो माँ बनूं तो उसके लिए पहले जाना पड़ेगा ना, तभी तो माँ
बनूंगी। सतयुग में तुमको आना है, शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता विकराल विनाश खड़ा आगे।
हम यज्ञ में देखें कोई कम मुश्किलें नहीं आई, बहुत आई। ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी आई, कितने कलंक लगे बाबा के ऊपर, लेकिन बाबा ने कैसे उसको सहज कर दिया। बच्चे कलंकी धर कहते हैं ना, कलंक लगेंगे, कलंकी दर अवतार कहते हैं, कल की अवतार कहते हैं, तो कलंक लगने वाले होते हैं, तो इसीलिए बाबा पर कलंक लगते। बाबा उसको हंसी हंसी में टाल देते थे कि देखो बच्चे, हाँ क्या क्या कलंक लगते थे बाबा के ऊपर, चरित्र पर कलंक लगते थे कि देखो ये अपने आप को श्री कृष्ण समझता है, इसको अभी 400 रानियां मिल गई है, क्योंकि उस समय वो बहनें जो यज्ञ में थी, 400 रानियां मिल गई है, तो वो कहता है कि मुझे तो 16,108 रानियां चाहिए, जैसे श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, तो इसीलिए अभी तो 400 मिली। अभी बाबा कहते हैं मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ, परंतु श्री कृष्ण का साक्षात्कार बाबा से होता था, ब्रह्मा बाबा से, पर ये ब्रह्मा बाबा तो कुछ नहीं करता था, बाबा तो और ही कहते थे वाट वेंदे बामण फाथो, सिंधी में कहते हैं वाट वेंदे बामण फाथो, रास्ता चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। नहीं तो ब्रह्मा बाबा का क्या नाम था, मान था, शान था, राजाओं महाराजाओं के साथ बाबा का उठना बैठना था, अंग्रेजों के साथ भी था, क्योंकि वही उनके ग्राहक थे, हीरे जवाहरातों के जेवर तो वही खरीदते थे बाबा की दुकान से, तो सबको पहचानते थे। उनको राजा महाराजा निमंत्रण देते थे, इतने बड़े दानी थे, इतना नाम था समाज में। और जैसे शिव बाबा ने प्रवेश किया तो कितने कलंक लगने लगे। तो बाबा कहते थे ये रास्ते चलते ये ब्राह्मण फंस गया, शिव बाबा की प्रवेशता हो गई। लेकिन बाबा ने कैसे हंसी हंसी उसको पार किया, क्योंकि शिव बाबा का कार्य है ये, मनुष्य का कार्य नहीं है, इंसान का कार्य नहीं है। बेगरी पार्ट आया तो भी बाबा ने कभी भी चिंता नहीं की, शिव बाबा का ये का कार्य है, उनको चलाना, यज्ञ उनका है, मेरा नहीं है, शिव बाबा का है, वो चला रहा है। तो समस्याएं तो आएंगी जीवन में, ये कलयुग है ही समस्याओं का घर, लोगों से आएंगी समस्याएं, क्योंकि सबके विचार अपने अपने हैं। लेकिन मैं उसमें, जैसे आज भी बाबा ने कहा, न हिलना है न डुलना है, अचल अडोल अटल कैसे रहना है हमें, वो तब आता है जब हम अपनी सोच को बदल देते हैं। बस अनेक प्रकार के संस्कार वाले लोग हैं, और बाबा यहाँ तक कहते हैं कि एक ही संस्कार न मिले दूसरे से। परिवार में भी हम देखते हैं एक के संस्कार न मिले दूसरे से, दुनिया की तो बातें छोड़ो, ब्लड रिलेशन में भी तो यही है ना। आत्मा तो सबकी अलग अलग है, स्वभाव संस्कार भाग्य कर्म किसी एक का दूसरे से नहीं मिलता, जैसे किसी की अंगूठे की छाप दूसरे की अंगूठे से नहीं मिलती है। तो जब ये बातें है जानते हैं तो कैसे उसको एडजस्ट करना होता है। तो उसमें कितने, जब अष्ट शक्तियां हम बताते हैं तो उसमें क्या बताते हैं, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये दो शक्तियां बहुत काम करती है, खास करके संबंधों में। सहन करना एक बहुत बड़ी कला है। चलो कोई किसको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते, बाबा तो कहते हैं रिस्पेक्ट दो, चाहे कैसा भी है सबको सम्मान दो, सबके गुण देखो, तो गुण देखेंगे तो आप उसके लिए अच्छा सोचेंगे, अगर अवगुण देखेंगे तो नेगेटिव सोच चलेगा। उसके गुण देखो तो चाहे कितना भी अच्छा सोचो उसको सम्मान भी दो, लेकिन वो उसको उल्टा ले लेगा, हाँ अभी पता है ये क्यों सम्मान दे रहे, इसको कुछ चाहिए मेरे से, उल्टी सोच, अब हमको कुछ चाहिए ही नहीं परंतु मेरे अंदर में कि मैं इसको सम्मान दूं, परंतु वो उसको सदा उल्टा समझेगा कि इसको मेरे से कुछ चाहिए। तो बाबा कहते अच्छा चाहिए नहीं, सम्मान भी देते तो भी समझता नहीं है, तो फिर क्या करो। ठीक है संबंध तो है ना, संबंध को तोड़ना तो है नहीं, पति पत्नी का ही संबंध है, जीवन साथी बनाया है, तो संबंध तो तोड़ना नहीं है, साथ भी रहना है। चलो सम्मान वो नहीं समझते तो कम से कम उसको सहन तो करो, सहन तो करो कि इसका यही संस्कार है, क्या कर सकते हैं, इसका यही संस्कार है, तो जो बात उसको अच्छी नहीं लगती है मैं वो नहीं करूं, इसमें क्या है। कई बार होता है ना, इसको ये संस्कार ये पसंद नहीं है, ठीक है नहीं करूं, खुद को बदल लो। क्योंकि खुद को बदलना मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हमारा भी अहम भाव है, अभिमान है, इसीलिए हम खुद को नहीं बदलना चाहते, हम समझते वो बदले, और बाबा कहते वो तो बदलेगा नहीं। तो खुद को बदलकर दूसरे को बदलना ये वास्तव में उपाय होना चाहिए, परंतु हम खुद को नहीं बदलना चाहते, समझते वो बदले तो वो नहीं बदलेगा, तो सहन करना पड़ेगा। और जैसे हम सहन कर रहे हैं सामने जवाब नहीं देते, बाबा कहते कोई गुस्सा करे आप शांत रहो, वो शांत रहेंगे यही उसके लिए सजा है, वो कितना भी बोले है ना। वो एक कहानी सुनाते ना चुटकुला जैसे ही है, एक माता थी सारा दिन बस गुस्सा 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 सबसे गुस्सा करती थी, पड़ोसियों से भी घर वालों से भी सबसे बस गुस्सा ही गुस्सा था। तो एक दिन सब ने ठान लिया इसको कोई जवाब नहीं देगा, बोलती जाए भले बोलती रहे कोई इसको जवाब नहीं देगा, कोई सामने से नहीं कहेगा उसको जो चाहिए बोलती जाए। तो सब ने यही ठान लिया, उसका नाम तो था शांति लेकिन अशांति फैलाने वाली थी। तो जब कोई उसको सामने जवाब नहीं देता था तो उसको अंदर में और गुस्सा आता था। तो वो बाहर गई और देखा एक कुआं है, अब कुएं में उसने झांका पानी था, अब उस पानी में तो कोई इसका अपना ही प्रतिबिंब था, अब उसको लगा कोई उस कुएं में है, गुस्से में तो थी ना, तो गुस्से में थी और देखा कोई है उसके अंदर, तो उसने क्या किया एक पत्थर उठाया और मारा कुएं में डाला, तो आवाज हुआ, अब तक तो आवाज ही नहीं था, कोई जामने ही नहीं बोलता था इनके, अब आवाज हुआ टुबुक, वो पानी उसमें गिरा, पानी में वो पत्थर गिरा तो टुबुक आवाज हुआ। अब जैसे ये आवाज हुआ तो उसका और गुस्सा बढ़ गया, उसने कहा टुबुक तू टुबुक तेरा बाप टुबुक तेरी माँ टुबुक सब सारे परी, वो जो भी उसके अंदर है उसको टुबुक टुबुक का, ठीक था तो उसका अपना ही प्रतिबिंब लेकिन आवाज जो सुनी। तो देखो ये खुद को ही दुख दे रही है और क्या कर रही है, खुद को ही दुख दिया ना, इन सब की सबको बद्दुआएं दे दी, अपने माँ बाप और सबको बद्दुआ दे दी, ये है दुनिया का हाल। लेकिन हमारा फर्ज क्या, ये थोड़ी कि जवाब देना है, जरूरी नहीं है। तो परिवार में तो ऐसा करना होता है, खुद को बदलना होता है। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं समस्या को बढ़ाना नहीं है, सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि दुखी होना रोना, चलो सामने जवाब नहीं दिया, एक तो सामने जवाब देने से वो चुप तो होगा नहीं क्योंकि वो तो गुस्से वाला है, हमको ही शांत रहना पड़ेगा। पर चलो हम शांत थोड़ा नहीं रहे और सामने जवाब दे दिया वो और करेगा आपको, और करेंगे फायदा तो कुछ होगा नहीं, परिवार है परिवार में ही रह रहे हैं, निकल तो नहीं जाएंगे हम। लेकिन हमारी सोच को कैसे बदलना होगा कि चलो पॉजिटिव ना भी सोचो सहन भी कर लो, लेकिन इसको और क्या सोचें ताकि उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन आ जाए, हमारी सोच में और शक्ति भरनी होगी। ये तो है ही ऐसा, ऐसे भी नहीं कहना है, वो तो है ऐसा पता है, ये तो मानेगा नहीं, ये नहीं करेगा, ये नहीं बना, ऐसे भी नहीं सोचना है, लेकिन अंदर में क्या सोचना है इसका ये पार्ट है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, क्या उसका पार्ट समझ करके हम उनसे उसी में उस स्वीकार करके उसको हम साक्षी होके देख सकते हैं। कई बार इससे भी नहीं होता है तो इससे और, जैसे कोई डोज होता है ना, डोज ज्यादा बढ़ाते जाते हैं डोज, तो बढ़ाना कैसे है डोज कि ये बिचारी या बिचारा ये बहुत दुखी आत्मा है, ये दुखी आत्मा है, तो दुखी आत्मा को आप क्या क्या करेंगे, उसको आश्वासन देंगे, उनको थोड़ी खुशी देंगे, हाँ यही करेंगे ना। या जैसे कोई रास्ते में पागल आदमी जा रहा है, हम जा रहे और पागल आदमी एक खड़ा है, और वो पागल व्यक्ति थोड़ा दिमाग का कमजोर है, पागल है, वो हमको गालियां देना शुरू कर देता है, अब हम क्या करते हैं उस समय, उसको गाली देते हैं क्या, क्या करते हैं, शराब पिया हुआ है ऐसे ही बस लड़खड़ा रहा है, पता है ये शराब पिया हुआ है ऐसे ऐसे गाली दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे बिचारा, क्या कहेंगे बिचारा, हाँ बिचारा, दया आती है, दया आती है उस व्यक्ति पर। अब कसूर तो उसका ही था, शराब वराब पिया हुआ है, पता नहीं क्या खाया पिया होगा। तो इसीलिए हमको वहां से हट जाना है, इसीलिए बाबा कहते हट जाओ वहां से, बात को आगे बढ़ाओ ही नहीं। सहन भी करना है फिर समाना भी है। चलो उस वक्त तो सहन कर लिया पर समाया नहीं, 10 जनों को जाकर के कह दिया। हम मिसाल देते हैं कि सास बहू का झगड़ा हो गया, अब सास तो बोलने वाली है पर बहू ने सास को सामने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने जाके पड़ोसी को कहा कि मेरी सास ऐसी है, मेरी सास ऐसी है। अब पड़ोसी को तो मिर्च मसाला मिल गया ना, पड़ोसी के पास क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है। अब वो पड़ोसी फिर आकर के मेरी सास को कहेगी, अरे तुम्हारी बहू तो ऐसी है, उसने ये कहा तुम्हारे लिए और मिर्च मसाला डाल करके पता नहीं और क्या क्या कह दिया, तो बस झगड़ा और चालू हो गया। तुमने मेरे लिए ऐसे कहा, क्या समझती हो तुम, झगड़ा और बढ़ गया। अब क्या करे, समाए भी नहीं, समा भी नहीं सकती है क्योंकि अंदर में तो उसको है ना गुस्सा, तो फिर क्या करे। तो कई हमारे पास आती कहते बहन जी फिर हम क्या करें, समस्या है ये, समस्या है तो मुश्किलात है, हम क्या करें, कैसे उनको हम सहन करें। तो उसका सहज उपाय क्या होता है, दुनिया में क्या होती है, बातें होती है ना, अभी कोई किससे लड़ रहा है, किसको मार रहा है, तो क्या कहेंगे, जाओ पुलिस में रिपोर्ट करो। खुद आप हाथ में लॉ नहीं उठाओ, क्योंकि हम खुद अगर लॉ हाथ में उठाएंगे तो क्या होगा, उसने 2 गाली दी मैंने 4 दी, उसने 8 दी मैंने 16 दी, उसने 32 दी मैंने 64 दी, मल्टीपल उसका होता गया। आखिर हमको इतना गुस्सा आया जो हमने बंदूक उठा के उसको मार डाला। अब बताओ दुनिया में तो ये होता है ना, मार भी डाला। अब मार डाला तो उसने जो किया वो तो बात नहीं, वो तो मर गया, लेकिन दोष तो हमारा हुआ ना, हमने इसको मार क्यों डाला, तो पड़े रहो जेल में। पर 2 का 4 जो सुनाया हमने, इसीलिए बाबा कहते वहां से हट जाओ, बस बात ही खत्म, न बात होगी न बात बढ़ेगी न कोई पाप कर्म होगा, क्योंकि 2 हाथ है तब ताली बजती है, अब एक ही हाथ है तो ताली क्या बजेगी। परंतु फिर भी अगर वो बढ़ जाता है बहुत, तो फिर आपको अप्रोच करना पड़ेगा ऐसे व्यक्ति को जो न्यूट्रल हो, भले केस करो, डाइवोर्स देना है, कुछ करना है, करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है। अपने आप को अंदर वो टेंशन में नहीं लाओ, नहीं तो टेंशन में लाया बहुत कुछ किया तो फिर अपने ही शरीर पर नुकसान पड़ता है, क्योंकि इतना तनाव में आ जाते हैं तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, शरीर इतना वो ले नहीं पाता है। इसीलिए भले कंप्लेन करो, जो व्यक्ति जो न्यूट्रल है उनको कहो, इसीलिए सहन करने के बाद समाने के बाद जब वो बात नहीं बनती तो परख शक्ति है, परखो इस परिस्थिति को, परखो इसका नतीजा क्या निकलेगा, क्या निकल सकता है और आगे, क्योंकि ज्यादा भी सहन करना मुश्किल हो जाता है। परख करके फिर निर्णय लो कि किसको आप महत्व देंगे। जैसे कोई आपके पास आता है और आपको बंदूक दिखाता है, कहता है सब जो भी आपने पहना है, जेवर वेवर धन जो पैसा सब मुझे दो, नहीं तो मार डालूंगा, आप क्या करेंगे। आपके पास कोई और साधन कुछ भी नहीं है, वो तो केवल आपको धमका रहा है, डरा रहा है कि आपका सब जो कुछ है आप दे दो। तो समझदारी तो यही है, दे दो, सचमुच समझदारी ये दे दो ना, धन तो वापस आ जाएगा, वो तो हाथों की मैल कहते हैं, धुल गया फिर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु वो आपके धन के पीछे नहीं है, वो आपके चरित्र के पीछे है। अब वो तो बहुत बड़ी बात हो गई चरित्र के पीछे, और जब चरित्र के पीछे तो आप परिस्थिति का, वो परिस्थिति आ गई, वहां सहन नहीं करना होता है, वहां समाना भी नहीं होता है, वहां लड़ना होता है, सामना करना होता है, तो वो भी तो शक्ति है, वो परिस्थिति बन गई, वो व्यक्ति नहीं बना। व्यक्ति को तो आपने सहन किया, खाली धन मांगा आपने दे दिया, लेकिन धन भी अगर आपने दिया ना तो भी ये सोच तो मन में आएगा ही, लो मर जा जा ले, हाँ मर जा, तो अंदर में बद्दुआ तो साथ में जाएगी। वो बद्दुआ जो निकली ना, वो जो धन आपने दिया या जो कुछ उसको दिया, उसको सुख नहीं मिलने वाला है उससे, क्योंकि बद्दुआ के साथ मिला। इसीलिए कहते हैं कि हाँ, जो माँ जो सहज मिले वो दूध बराबर, जो मांग लिया वो पानी बराबर, और जो खींच लिया वो रक्त बराबर। क्योंकि न उसको सुख देगा वो रक्त, न दूसरे को मिलेगा रक्त। वो रक्त अगर दान करे स्व इच्छा से तो वो किसी की जान बचाएगा, पर किसको गोली मारेगा, वो रक्त निकलेगा वो किस काम आएगा, किसी के भी काम नहीं आएगा। इसलिए जो सहज मिले वो दूध बराबर, आपने मांगा नहीं लेकिन किसी ने आपको दूध दिया वो शक्ति देगा। पानी फिर भी मांगा जाता है, मांगा जाता है ना पानी, कहीं जाएंगे भाई कहेंगे क्या खाएंगे, नहीं नहीं बस पानी दो, पानी तो पहले रख देते अपने आप, मेहमान आए हैं पहले पानी देंगे, बिना मांगे मिल जाता है। वो आपने मांगा और उसने कहा भाई चलो मांग रहा है दो, तो वो पानी बराबर हो गया, उस समय खुशी होगी या मेरी प्यास बुझ गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे कोई वो काम आ भी जाए, क्योंकि मांग तो लिया तो थोड़ा भारी मन से अब दे देंगे, वे मांग रहा है छोड़ो दे दो, पर खींच लिया तो वो किसके भी काम नहीं आएगा, वो बद्दुआ के साथ आएगा। और जब बद्दुआ के साथ वो चीज आई तो वो तो सुख के बदले दुखी देगी। तो इसलिए कहा परख शक्ति या फिर निर्णय शक्ति। तो निर्णय शक्ति है कि चलो हाँ, भले अगर डाइवोर्स पेपर देना है डाइवोर्स देना है, हर जाने चलो कोई बात नहीं, क्योंकि और अति नहीं जा सकते। इसके ऊपर सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स जब कराते हैं, वो मैनेजमेंट कोर्स में ये बात आती है। हम लोग कॉलेज में थे तो कॉलेज में वो मेंढक का डिसेक्शन करते थे, मेंढक को काटना होता था, तो मेंढक को कैसे वो मारते हैं, उसको पहले तो मर जाए तभी तो ये सब डिसेक्शंस करते हैं। तो उसको उसके लिए मिसाल देते हैं कि अब उनको ना गर्म पानी में डालते हैं, उबलते हुए पानी में डालते हैं मेंढकों को मारने के लिए। तो वो मेंढक जो क्या करता है, अपने अंदर की जो गर्माइश है ना उसको बढ़ाता जाता है, क्योंकि पानी तो उबल रहा है और वो अपने अंदर की गर्माइश बढ़ाता जाता है ताकि उस गर्म पानी का सामना कर सके, क्योंकि खुद गर्म होगा और पानी गर्म है तो एडजस्ट हो जाएगा। अब पानी तो उबल रहा है और वो गर्माइश अपनी बढ़ा रहा है, ताकत उसमें यूज कर रहा है, सारी ताकत उसी में लगा रहा है और पानी तो और बढ़ता जा रहा है, तो आखिर इसकी ताकत भी काम नहीं करती है और वो कूदना चाहता है, क्योंकि वो टंकी जिसमें डालते हैं वो तो खुला होता है, वो बंद नहीं होता है। अब मेंढक तो कूद सकता है, ऊपर जा सकता है और निकल सकता है बाहर, लेकिन वो निकलता नहीं है, वो उसी में ही अपनी गर्माइश को बढ़ाता जाता है बढ़ाता जाता है। और जब आखिर में वो नहीं सहन कर सकता, वो कूदना चाहता है तो कूद भी नहीं सकता, क्योंकि ताकत ही चली गई उसकी, वो अपने आप को गर्म करने में उसकी ताकत खत्म हो गई। अब खत्म हो गई तो वहीं पड़ा रहेगा, फिर मर जाता है, हालत यही होती है। तो अति सहन अति समाना वो भी नुकसान कर सकता है। तो सही व्यक्ति के पास जाओ, सही कार्य करो, परख करके फिर निर्णय लो। तो जो व्यक्ति उसमें आपको मदद कर सकता है उसके पास जाओ, जो जो मिर्च मसाला डालकर और बात को बढ़ा देगा और परीक्षा ला देगा, परेशान करेगा, उस व्यक्ति के पास थोड़ी जाना है। ऐसे तो नहीं सबको जाकर के बताना है, जरूरत नहीं है, उनको तो मजा आएगा कि हाँ इनके घर में झगड़ा हो रहा है, अब हम देखें तो सही क्या झगड़ा होता है, उनको तो एक मिर्च मसाला मिल जाता है। इसलिए जो सही स्थान है वहां पर देना है। जैसे आपको उल्टी आ रही है तो उल्टी कहाँ करेंगे, सॉरी सब जगह उल्टी करेंगे, थोड़ा तो अपने अंदर समाना होता है ना, सहन भी किया समाया भी, फिर देखा कि वो उल्टी बहुत आ रही है तो भागे और बेसिन के आगे बाथरूम में जाकर के चलो उल्टी की, या कोई चीज ली और उसमें उल्टी की, गिराएंगे तो नहीं ना सब जगह, थोड़ा तो सहन करके समाना होता है। फिर समझ लिया कि ये नहीं रुक सकता है तो फिर सही स्थान पर उसको उस उल्टी को करना है, तो सही स्थान भी जरूरी है। तो इसलिए आसान करने के लिए हम टोटल पूरा सहन करें समय ये से नहीं होता है, भले वो अष्ट शक्तियां हैं पर किस समय कौन सी शक्ति को यूज करना है वो बहुत आवश्यक है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसके लिए भी समझ चाहिए, जो भी कार्य करो सोच समझ कर करो, ऐसे नहीं कि बस कर लिया। उसके लिए बाबा कहते दे अभिमान है, इसीलिए तुरंत कर लिया। दे अभिमान के वश जो व्यक्ति होता है ना वो सोच समझ कर नहीं करता है, दे अभिमान में आकर के कर्म पहले कर लेगा जो नहीं करना चाहिए था, उसका परिणाम बुरा होगा। तो परिणाम सोचा नहीं और कर लिया, और करने के बाद समझा ये गलत किया, और समझने के बाद फिर सोचा कि अभी क्या करें, तो पहले किया फिर समझा फिर सोचा, और होना क्या चाहिए, पहले सोचो फिर इसको समझो ये कैसी परिस्थिति है, परिस्थिति क्या है वो समझो, किसको आप महत्व देंगे, और फिर करो, अगर करना है नहीं करना है तो नहीं करो। तो इसको कहते हैं मुश्किल को सहज बनाना, कार्य करने से पहले के बाद नहीं। इसलिए देखो हमारे मुख से भी जो शब्द निकलते हैं वो शब्द भी तीर की तरह है, तीर, और जो होठ है ना ये कमान की तरह है, इस कमान से जो तीर निकला, एक बार तीर निकल गया मुख से, शब्द निकल गया, वो वापस तो आएगा नहीं। फिर चाहे कितना भी आप कह दो मेरा भाव नहीं था, मेरी भावना नहीं थी, मेरे अंदर में कुछ नहीं था, पर मुख से तो निकल गया। मुख से जब निकल गया जरूर पहले तो मन में आया होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता कि मन में नहीं आया होगा, तो मन में आया परंतु सोच कर फिर समझा नहीं किसका नतीजा क्या होगा, क्योंकि फिर बुद्धि समझ देती है कि ये गलत होगा, और बुद्धि को दबा दिया और संस्कार इमर्ज हो गया बिना सोचे समझे, कितने जन्मों के संस्कार, हिसाब किताब कर्मों का न जाने क्या क्या है। लेकिन जो ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है उस ज्ञान से के आधार से हमारे अंदर हिम्मत तो आती है, बाबा साथ है, सही कार्य के लिए बाबा मददगार है, हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मतहीन नहीं बनना है, दृढ़ता लानी है। लेकिन हर कार्य के लिए समय होता है, कई ऐसे कार्य होते हैं अगर हम उसी समय करते हैं उससे नुकसान हो सकता है, हमको रुकना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज ए ग्रेट हीलर, समय बहुत बड़ा बहुत बड़ी दवा है, वो उस कार्य को हल्का करता है। समय, डॉक्टर कहेगा ना समय लगेगा तभी तो होगा, ऊपर अभी हो गई टांग टूट गई तो समय तो लगेगा ना उसको, उसका वो सही होने में, तो समय। तो कई ऐसी समस्याएं हैं जो उस समय नहीं समझ में आती है तो उसके लिए रोकना पड़ता है कि कोई बात नहीं समय पर हम करेंगे अभी नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो समझते बस बाबा ने मुझे टचिंग दी, ये बाबा की टचिंग है, बाबा की टचिंग है, लेकिन ये बाबा की टचिंग है या मेरी मनमत है ये कैसे पता चले, कई बहुत प्रश्न करते हैं, ये कैसे पता चले ये मनमत है या बाबा की टचिंग है। अगर वो बाबा की टचिंग होगी ना तो केवल आपके मन में क्यों आएगी, दूसरों के मन में भी आनी चाहिए। क्योंकि बाबा की टचिंग है तो केवल आपको नहीं मिलेगी, दूसरों को भी मिलेगी साथ साथ, क्योंकि बाबा ने दी है। और अगर आपको जो मन में आया अगर समझते बाबा की टचिंग है तो दूसरों से भी राय लो। ऐसे नहीं बाबा की मुझे टचिंग आई है ये मैं करूंगा, नहीं, दूसरों से राय लो। दूसरे रोक रहे हैं आपको, वो समझते ये गलत है, ये मतलब आपकी मनमत है। और अगर आप अंदर डर डर के भी करेंगे तो क्योंकि वो मनमत है, वो बाबा की श्रीमत नहीं है, वो टचिंग नहीं है, तो आपको सफलता भी नहीं मिलेगी। इसीलिए सबकी राय भी बहुत जरूरी है। अगर कोई राय आपको दे रहे हैं ये नहीं होना चाहिए तो उनकी राय भी स्वीकार करो। तो पहले तो सहन करना है, समाना है, फिर परखना है, फिर निर्णय लेना है। वो निर्णय भी उस आधार पर हो कि इससे फायदा क्या होगा। अगर मैं अपनी मनमत पर चलूंगा तो हमारे संबंध और बिगड़ेंगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। झुकना भी बहुत जरूरी है। हमारी बड़ी दीदी की लौकिक माँ थी, बाबा उसको क्वीन मदर कहते थे, बहुत रॉयल थी, बड़े रॉयल फैमिली के थे वो, बहुत रॉयल थी। वो भी सरेंडर हो गई बेटी के साथ, माँ बेटी और भी उनकी बहन सब सरेंडर हो गए थे यज्ञ में। तो उनकी जो माँ थी उनके पास टीचर्स बहने जाती थी ना, क्वीन मदर बाबा ने नाम दिया था उनका, बहुत रॉयल। तो कोई जो हमेशा जब भी कोई टीचर उनके सामने जाती थी, कुछ समस्या उनको बताती थी, तो दादी वो क्वीन मदर यही कहती थी, अरे झुको झुको, मरो मरो, सिखो सिखो, सिंधी बोलती थी। तो झुको मरो और सीखो, क्योंकि झुकने बिना मरने बिना सीख नहीं सकते हैं। ये नहीं कि हम कोई सीख चुके हैं सब कुछ हम जानते हैं, नहीं, दूसरों से भी हमें कुछ सहयोग लेना चाहिए, मदद लेनी चाहिए, अपनी मनमत पर नहीं चलना चाहिए, तब हम संगठन में रह सकते हैं। एकता की कितनी बातें चल रही है, वो एकता का आधार क्या है, संगठन में एक दो से प्यार। तो चलो अगर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, पर स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। हमारी दादी जी कहती थी, हाँ बड़ी, हमारी दादी जानकी की विशेषता ये थी कि दादी जानकी ने एक बार अपना अनुभव सुनाया। क्या सुनाया कि एक वो यज्ञ के अंदर एक बहन थी, उसके साथ कोई एडजस्ट नहीं हो पाता था, कोई नहीं एडजस्ट हो पाता, सब माना परेशान हो जाते थे उससे, बड़े विचित्र संस्कार थे उसके। तो दादी जानकी को कहा कि आप इनके साथ रहो, और दादी जानकी ने सहज स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं इनके साथ रहूंगी, कोई नहीं रह सकता, मैं रहूंगी। तो दादी जानकी ने कैसे युक्ति से उसको अपना लिया, उसकी सारा दिन महिमा करती थी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये महिमा सब सुनते थे तो लोगों की बुद्धि भी बदलती गई, क्योंकि ये महिमा करती थी दादी उन सब के प्रति, और ये इतना उसको प्यार देती थी, इतना प्यार देती थी जो बात मत पूछो। आखिर वो स्थिति आई कि जो दादी उसको कही वही मानती थी, और किसका नहीं मानती थी, बस दादी कहे तब मानती थी। सुनो तो देखो, हाँ दादी के जो कहे तो उसी की मुरीद हो गई, बस हाँ बस ये कहेगी तो मैं मानूंगी, नहीं तो नहीं मानूंगी। परंतु ये कैसे हुआ, बदल कैसे गई, इस आधार पर बदल गई क्योंकि उसको प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला, क्योंकि उसको स्वीकार किया। हमारी दादी चंद्रमणि थी, बहुत बहुत महान आत्मा थी दादी चंद्रमणि। मुझे याद है एक बार एक टीचर बहन दादी चंद्रमणि के पास गई, तो किसी ने उसकी किसी से अनबन कुछ हो गई होगी, तो दादी ने उसको, मतलब वो बहन ने दादी को शिकायत की उस बहन की, हाँ कि ऐसी है बना थोड़ा गुस्सा करने वाली ये है। तो दादी ने कहा अरे क्योंकि बूढ़ी भी बूढ़ी हो गई थी तो थोड़ा नेचर कुछ और ही थी। तो दादी ने कहा देखो भले गुस्सा करती है लेकिन 80 साल की वो बूढ़ी हो गई थी जो गुस्सा करती थी, देखो सारी आयु कितनी पवित्र है, वो पवित्रता है उसके अंदर, उसकी पवित्रता देखो, बोले गुस्सा नहीं देखो लेकिन उसकी पवित्रता देखो, और देखो बाबा की वो बन गई, बाबा को अपना जीवन दे दिया, तो कितनी पवित्र आत्मा, जब भी वो कुछ भी कहे ना आप उनकी पवित्रता देखना। और सच कुछ देखा गया कि जैसे उनके प्रति दृष्टि बदल गई तो वो भी बदल गई। अब परिवर्तन सहज है, बस मुश्किल को आसान करने का तरीका आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, अपनी वृत्ति बदलनी होगी, हाँ अपने आप को बदलना होगा बस। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अब इस संस्था का यही नारा है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन बहुत जरूरी है अगर विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं। हाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, आप कई तो छत्तीसगढ़ से या मध्य प्रदेश से आए होंगे, इंदौर जोन के हैं, तो जब हम योग शिविर कराते हैं तो कई मीडिया वाले भी आते हैं। तो मीडिया वाले आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, ओम प्रकाश भाई जी ने भेजा था। तो नई दुनिया निकलती है, प्रकाशित होती है ना इंदौर से नई दुनिया, तो नई दुनिया का जो मालिक था वो भी आया था, ओम प्रकाश भाई उनको लेकर के आए थे। तो उन्होंने शिविर की थी, उन्होंने शिविर की और उनको बहुत अच्छा लगा, ज्ञान तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके मन में ये था कि आपकी संस्था में जो कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये कैसे हो सकता है, हम खुद को बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी, ऐसे कैसे होगा ना। बुद्धिमान था तो बुद्धिमान की ये सोच होगी ना, दुनिया इतने 700-800 करोड़ की जनसंख्या है और सब बदल जाएंगे, हमारे एक के बदलने से क्या होगा। तो सबसे एक ही प्रश्न पूछता था, एक ही प्रश्न, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा। अब सब उसको यही बदल दे, पहले आप अपने आप को बदल के तो देखो, आप बदलेंगे तो आपके परिवार में परिवर्तन आएगा, परिवार से समाज में आएगा, समाज से देश में आएगा, देश से विश्व में आएगा, पहले खुद को। तो कहा ऐसे कैसे होगा, तो सबने एक ही जवाब उसको दिया तो भी समझा नहीं। फिर आखिर दादी जी के पास गया, दादी प्रकाशमणि से भी यही प्रश्न पूछा, तो दादी को तो पता था, मैंने बता दिया था दादी सबसे यही प्रश्न पूछ रहा है, तो दादी आप ही उनको समझाइए। अब दादी ने भी सोचा मैं भी यही जवाब दूंगी तो वो क्या कहेगा कि सब एक ही बात बता रहे, कैसे होगा। तो दादी ने कहा देखो मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, मैं आपको ये डायरी दे रही हूँ, आध्यात्मिक डायरी देती ना, नयों को देते आध्यात्मिक डायरी, और उसमें ऊपर और नीचे स्लोगन्स होते हैं। अब 200 पेज की डायरी, हर पेज पर ऊपर और नीचे स्लोगन है, जो अव्यक्त जो महावाक्य शिव बाबा के ब्रह्मा बाबा द्वारा उचारे हुए, तो वो महावाक्य ऊपर और नीचे लिखे गए हैं, 200 पेज माना 400 स्लोगन समझो। तो दादी जी ने कहा कि देखो बाबा आपको जवाब देंगे, मैं तो क्या जवाब दूं, बाबा देंगे, और आप ये डायरी बाबा देते आपको, आप कोई भी पन्ना खोलो देखो बाबा आपको जवाब क्या देते हैं। और सचमुच जैसे उसने पन्ना खोला ऊपर लिखा था स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो वो पढ़ा उसने और पढ़ करके फिर दादी जी को देख रहा है, मेरे को देख रहा है, औरों को देख रहा है, तो दादी जी को कहता है दादी आप में कोई जादू है क्या आप में कोई जादू है क्या। दादी ने कहा जादू तो कुछ भी नहीं है, आपको पूरी डायरी दी, आप कोई भी पन्ना खोलो, अब यही पन्ना आपने ही खोला क्योंकि ये बाबा का ही जवाब आपको यही है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो मुश्किल को सहज करने का एक ही तरीका है बस। इसलिए दूसरे को मैं बदलूं ये हो नहीं सकता। मुझे याद है जगदीश भाई का एक क्लास में सुन रही थी, जगदीश भाई ने एक प्रसंग बताया था, जगदीश भाई अपने जो वरिष्ठ भाई थे, कि किसी सेंटर पर कोई व्यक्ति था बहुत परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो किसी भाई ने सोच लिया अभी मैं इसको ठीक करूंगा, अब मैं क्या ठीक करूंगा, उसने ठान लिया मैं इनसे लड़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब बात तो भी बढ़ गई, बात बढ़ गई तो वो तो बात इतनी बढ़ गई जो वो चारों तरफ फैल गई वो बात। लेकिन हुआ क्या कि वो व्यक्ति तो बदला या ना बदला, पर जिसने ठान लिया ना कि मैं इसको ठीक करूंगा, वो खुद ही माया के वश हो गया और ओम शांति हो गया। देखो अब दूसरे को बदलने गए, खुद ही ओम शांति हो गए। तो दूसरे को बदलने की कोशिश मत करो, ना आप किसी को बदल सकेंगे। इसलिए कहते ना, तीन उंगली अपने तरफ है, एक उंगली अगर उनको देते हैं तो बस खाली अपनी सोच को बदल दो। डॉक्टर बड़ी बड़ा डोज देता है, उस समय ये सोचो ये आत्मा बहुत कमजोर है। अब कमजोर को तो शक्ति देनी है ना, तो कैसे देंगे शक्ति? उनके प्रति शुभ भावना रखेंगे, शुभकामना रखेंगे, सकाश देंगे, बस ये करना है। उससे अपने को भी फायदा ही होगा, शुभ भावना शुभकामना सकाश देने से। सकाश कैसे देंगे? बाबा उनको शक्ति दे रहा है। जैसे लेजर की बीम होती है ना, लेजर की किरणें, वो कैसे उसको जोड़ती है, उसको कनेक्ट करती है, उसको शक्ति देती है। बस ये अंदर में सोचो, बस बाबा को याद करते हैं, बाबा को साथ रखते हैं और उस आत्मा को वो सकाश देते हैं। क्योंकि वहां कर्मणा काम नहीं करेगा, वाचा काम नहीं करेगा, सिर्फ मनसा ही काम करेगी। मनसा की शक्ति बहुत पावरफुल है, जैसे लेजर बीम्स होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो इसी प्रकार ये, इसलिए बाबा सकाश कहते हैं, मनसा सेवा कहते हैं। तो कई आते कहते मनसा सेवा कैसे करें, मनसा सेवा कैसे करें? बस बाबा को सामने लाओ और बाबा जैसे उसको शक्ति भर रहा है, उस जैसे सूरज की किरणें उसको मिल रही है और वो चार्ज हो रहा है, ये अनुभव करो। आप श्रेष्ठ संकल्प करके उसको चार्ज कर सकते हो। तो देखो धीरे धीरे उसके अंदर भी अवश्य परिवर्तन आएगा, ये जादू का खेल हो जाएगा। सचमुच हम आपको बताएं, कांटे से फूल बन जाएगा और धीरे धीरे ये जंगल फूलों का बगीचा बन जाएगा। चलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी जी ने मुश्किल को सहज करने की बहुत सुंदर युक्तियां बताई, यज्ञ इतिहास के उन स्वर्णिम पन्नों को भी खोला, दीदियों को दादियों को याद किया, हम सभी को भरपूर किया, हम सभी भावनात्मक रूप से ज्ञान से योग से शक्तिशाली बने और परिस्थितियों को पार करने के लिए सभी तैयार हो गए हैं। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे, उसके पश्चात डायमंड हॉल के सभी सेवाधारी यही रुकेंगे, सामने फ्रंट में सोफा पर आकर बैठेंगे, और जो भी यूथ भाई बहने हैं और जो अभी डायमंड हॉल की सेवा में थोड़ा देर सहयोग देना चाहते हैं, वो भी सामने आकर फ्रंट में सोफा पर बैठेंगे।
लख दातार हमारा शिव बालक दाता हमको काहे की चिंता। बना है साथी सृजनहार हमको काहे की चिंता, मिला है करण करावनहार हमको काहे की चिंता। Thank you.